नमस्कार भारत, 28 अगस्त बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। ब्राजील ने अमेजॉन की आग बुझाने के लिए G7 देशों की मदद ठुकराई, कहा माफी मांगे मैक्रों।
Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive, e pessoas com pensamento.
पाकिस्तान का दावा, भारत की गोलीबारी में दो आम नागरिकों की मौत।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की प्रशासन का कहना है कि इंडियन फौज ने मंगलवार को दिन के समय पांडू सेक्टर में भी बगैर किसी कारण के गोलाबारी की।
सुनेंगे कश्मीर के उस राजा की कहानी जिनकी कब्र बिहार में है।
अकबर के द्वारा पराजित हुआ और जिसको अकबर ने लाकर बिहार में परगना बिस्वक में बसाया। कुछ जमाने के बाद 1592 में उसकी मृत्यु हुई।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, संदीप राय से। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने अपने देश के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए मदद मांगी है। पड़ोसी देश ब्राजील में अमेजन के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए G7 देशों ने अभी हाल ही में मदद का हाथ बढ़ाया है। मोरालेस ने कहा कि उन्होंने पेरू और पराग्वे के राष्ट्रपतियों से तालमेल के साथ कार्रवाई करने के बारे में बात की है। पेरू ने 2 हेलीकॉप्टर देने का वादा किया है। ब्राजील और पराग्वे की सीमा से सटे बोलिविया के पूर्वी इलाके में लगी आग का क्षेत्रफल 2 गुना हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक 6,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल आग के कारण नष्ट हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया के इदलिब में अतिरिक्त कार्रवाई के लिए तुर्की के साथ उसकी सहमति बन गई है। रूस और तुर्की इदलिब के हालात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। चरमपंथी सीरिया के सरकारी फौजों पर लगातार हमले कर रहे हैं और रूसी सेना के ढांचे पर भी हमले की कोशिश हो रही है। हमें पक्का भरोसा है कि शांति जोन को चरमपंथियों की शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा और साथ ही इसे नई लड़ाई का केंद्र भी नहीं बनने दिया जाएगा। इस संबंध में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ हमने एक संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा बनाई है ताकि इदलिब में चरमपंथियों के अड्डों को नष्ट कर हालात को सामान्य किया जाए। ये थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। इराकी सुरक्षा बलों ने ऐतिहासिक कलाकृतियों को नष्ट करने वाले इस्लामिक स्टेट के एक चरमपंथी को गिरफ्तार किया है। इराकी गृह मंत्रालय ने कहा है कि गिरफ्तार शख्स ने कबूल किया है कि जब मोसुल शहर पर आईएस का कब्जा था, उसने ऐतिहासिक मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ा था। इराक और सीरिया पर इस्लामिक स्टेट के कब्जे के दौरान ऐतिहासिक धरोहरों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया और उसे फिल्माया गया। गूगल के एक पूर्व इंजीनियर ने संवेदनशील व्यापारिक जानकारियों को चुराने के आरोपों से इनकार किया है। इंजीनियर एंथनी लेवनादोस्की पर आरोप है कि 2015 में जब वो नौकरी छोड़ रहे थे तो गूगल की सहयोगी कंपनी वोम के सर्वर से उन्होंने हजारों फाइलें डाउनलोड की।
Let me be very clear. Not a single one of these supposedly secret files.
ये बिल्कुल साफ है कि कथित खुफिया फाइलों में से एक भी उबर या किसी अन्य कंपनी को नहीं गई है। एंथनी लेवनादोस्की निर्दोष हैं। उन्होंने न तो कभी कुछ चुराया और ना ही चुराने की कोशिश की। हम निश्चिंत हैं कि सुनवाई के दौरान सबूत और तथ्य उन्हें निर्दोष साबित करेंगे। एंथनी के वकील माइल्स एरलिच के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता जेरमी कोर्बिन ने कहा है कि बिना समझौते के ब्रेग्जिट को रोकने के लिए अगले हफ्ते सांसद एक कानून पास कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मजबूरन यूरोपीय संघ से ब्रेक्सिट के लिए और वक्त मांगना पड़ेगा। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में 2 पुलिस चौकियों पर विस्फोट में 2 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। गाजा को नियंत्रित करने वाले संगठन हमास ने इस पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसराइली सेना ने कहा है कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पिछले 4 महीनों में लेबनान ने 2,500 सीरियाई शरणार्थियों को वापस उनके देश प्रत्यर्पित कर दिया गया है। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि लेबनान के हायर डिफेंस काउंसिल के आदेश पर इस साल अप्रैल के बाद गैर कानूनी रूप से आए सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेजा गया है। एक अनुमान के मुताबिक लेबनान में 15 लाख सीरियाई हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अमेजॉन के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए G7 देशों की मदद लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उन्हें झूठा कहकर अपमानित करने के लिए माफी मांगनी होगी। ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरेलिस ने जंगलों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए मदद की गुहार लगाई है। मोरेलिस ने कहा है कि ब्राजील, पराग्वे और बोलिविया में हालात ठीक नहीं हैं और सभी को मिलकर इससे निपटना होगा। G7 देशों ने कहा है कि वे $2 करोड़ की मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्याप्त होगा। सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हुए पेरिस समझौते से वाकिफ हैं। अब यहाँ आग लगी है और वे सहयोग करना चाहते हैं। किसी भी सहयोग का स्वागत है और ये जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ बोलिविया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लातिन अमेरिका के लिए है। ये थे इवो मोरेलिस के शब्द। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने G7 देशों की आर्थिक मदद को लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो माफी नहीं मांगते, वो मदद की पेशकश स्वीकार नहीं करेंगे। बोल्सोनारो ने कहा कि मैक्रो ने उन्हें झूठा बताकर उनका अपमान किया है। मैक्रो ने जलवायु परिवर्तन को लेकर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था।
Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma...
हम मिलकर यहाँ समाधान तलाश लेंगे और मैक्रो जैसे बुद्धिमान लोगों और दुनिया को दिखा देंगे। अगर वो अपने ही देश में भारी विरोध जैसी जटिल स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, तो हमसे बहस करने से पहले उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। फ्रांस से बातचीत का यहाँ कोई विरोधी नहीं है और G7 के काम के लिए हम आभारी हैं। ये थे जैर बोल्सोनारो के शब्द। मैक्रो ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ब्राजील के लोगों को जल्द ही ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जो उस पद के लायक हो। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच चल रहे मनमुटाव पर ब्राजील में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का कहना है कि अगर अच्छी भावना से मदद की जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अमेजन पर ब्राजील का एकाधिकार होना चाहिए और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना स्वीकार्य नहीं है। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में भीषण आग से अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिंता के बाद G7 देशों ने मदद की पेशकश की थी। अमेजन के जंगलों में इस साल आग की रिकॉर्ड घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही पड़ोसी देश पराग्वे और बोलिविया के जंगलों में भी आग लगी है, जो दिन ब दिन बढ़ रही है।
ब्यौरा सुना रहे थे संदीप राय। उधर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रशासन ने भारत की ओर से की गई गोलीबारी में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत का दावा किया है। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव बढ़ा हुआ है। भारत की ओर से अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटना पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी MA जर्राल।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रशासन ने इंडियन फौज पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इंडियन फौज ने बगैर किसी कारण के लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर दूसरे दिन मंगलवार को भी गोलाबारी और फायरिंग की। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की घाटी नीलम के डिप्टी कमिश्नर राजा शाहिद के मुताबिक इंडियन फौज ने मंगलवार को दिन के समय ग्रेस घाटी के गाँव हेलमत, करीमाबाद और शिंडास में छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की। गोलाबारी के कारण एक बच्ची समेत 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। उनके मुताबिक भारतीय फौज की गोलाबारी से 3 घर भी तबाह हुए हैं। घायल व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अठमकाम मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सरकार ने एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की प्रशासन का कहना है कि इंडियन फौज ने मंगलवार को दिन के समय पांडू सेक्टर में भी बगैर किसी कारण के गोलाबारी की, मगर इस गोलाबारी से किसी व्यक्ति की मौत या घायल होने की कोई इत्तला नहीं मिली। उनके मुताबिक पीर के रोज भी इंडियन फौज ने चौकी समानी सेक्टर में स्नाइपर का फायर किया, जिसके कारण 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से जानकारी दे रहे थे MA जर्राल। उधर पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र और अफगानिस्तान से भारतीय व्यापार के लिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते को पूरी तरह बंद करने पर भी विचार कर रही है। और अब खबरें भारत से। उत्तर प्रदेश के संभल में अस्पताल से अपने भतीजे का इलाज कराकर लौट रहे दो लोगों पर भीड़ ने बच्चा चोर समझकर हमला कर दिया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल में कल बच्चा चोरी की कई अफवाहें फैलीं और अफवाहें इस हमले का कारण बनी। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
बच्चा चोर, बच्चा चोर और मारो मारो का शोर मचाती भीड़, जमीन पर गिरे दो बेबस लोग, हर ओर से पड़ते लात घूंसे और लाठी डंडे, और इसके बीच मोबाइल से वीडियो बनाते लोग। अब वायरल हो चुके एक वीडियो में जमीन पर पड़े राम अवतार गिड़गिड़ाकर बता रहे हैं कि जो बच्चा उनके साथ है वो उनका भतीजा है। मारने वाले उनका नाम, गांव का नाम और जात पूछने के बाद भी नहीं रुकते। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तक राम अवतार और उनके भाई राम बहादुर को अस्पताल पहुंचाया, राम अवतार दम तोड़ चुके थे और राम बहादुर अब एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वो अपने भतीजे का इलाज कराने जा रहे थे जब भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया,
दो व्यक्ति थे अपने भतीजे को लेकर के आ रहे थे इलाज के लिए, कोर थाने से लेकर के चंदौसी थाने में हॉस्पिटल से आ रहे थे। रास्ते में गरई गांव पड़ता है, वहीं पर कुछ लोगों ने रोक लिया और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक छुड़ा करके लाई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
हमले का शिकार दोनों भाइयों के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो बीमार भतीजे को लेकर अस्पताल गए थे क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं थे।
ये रीट गए थे दवाई लेने के लिए, बच्चों को लेकर आए, भतीजा था इनका, बाप घर न आए तो यही लेकर चले आए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंगलवार को बच्चा चोरी की कई अफवाहें फैली। अब पुलिस लोगों से अफवाहें ना फैलाने की अपील कर रही है।
किसी भी झूठी अफवाहों पे आप ध्यान ना दें। कोई भी बच्चा चोरी का गैंग ऐसा नहीं है जो कहीं से बच्चा चुरा रहा है। किसी भी इनोसेंट आदमी के साथ दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से, कृपया ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। गलत सूचना, झूठी सूचना, भ्रामक सूचना मत फैलाइए और अगर आप ऐसी अफवाह फैलाते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? समाजशास्त्री संजय श्रीवास्तव कहते हैं,
तो राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल सा बना दिया गया है कि आप ये कर सकते हैं और आपको आपको कुछ कहेगा नहीं, या आपने अगर ऐसा कुछ काम भी किया तो आपके आपके समर्थन में बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि इसने ऐसा कोई खास गलत नहीं किया। सरकार की सोच और सरकार की मानसिकता जब बदल जाती है तो ऐसी बातें होने लगती है। भीड़ जो हिंसा करती है वो पहले भी होता है, लेकिन हाँ उसके ऊपर पहले कुछ रोक टोक, अब रोक टोक नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि 5 साल में लोगों की मानसिकता अचानक बदल जाती है। 5 साल में सरकार की मानसिकता बदल गई है और हमारे यहाँ जो समाज है वो ज्यादातर जो वो सरकारी के इशारे पे चलता है और चलता आया। लेकिन
उनका ये भी मानना है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार को उच्च स्तर पर कदम उठाने होंगे।
निचली स्तर से कुछ नहीं हो रहा है, आप जो वहाँ कंस्टेबल को या दरोगा को कहेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। अगर तुरंत कुछ कदम उठाने हैं तो सरकार के सबसे सबसे बड़े नेता हैं, उनको कुछ उनको साफ साफ कहना पड़ेगा मीडिया के जो पहुंच है के द्वारा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग ये करते हैं उन्हें कड़ी सजा और तुरंत सजा मिलेगी।
लेकिन सवाल यही है कि भीड़ की हिंसा कब रुकेगी? कब तक लोग अपने बेगुनाह परिजनों के मारे जाने का मातम मनाते रहेंगे? दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पुलिसकर्मी 18 घंटों तक लगातार ड्यूटी करते हैं और उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता। इस बात का खुलासा स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया 2019 नामक रिपोर्ट में हुआ है, जिसे लोक नीति, कॉमन कॉज और CSCS द्वारा गहन सर्वेक्षण के बाद तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि कई राज्यों में पुलिसकर्मी अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं। पुलिस सुधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह से BBC संवाददाता सलमान रावी ने बात की, सुनिए।
कम से कम पुलिस सुधार की बात जो चल पड़ी है, मैं समझता हूँ यही एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मतलब जब जजमेंट हुआ था 2006 में, तो 2007 के बाद से जो आंकड़े आ रहे हैं, तो SPs और DIGs के रैंक्स में जो ट्रांसफ़र्स होते थे, वो ट्रांसफ़र्स के परसेंटेज गिरा है।
लोअर कॉन्स्टेबलरी की अगर बात करें, यानी सिपाही और ये जो नीचे के ऑफिसर हैं, जो IPS ऑफिसर्स के नीचे हैं, जो लगातार एक स्ट्रेच पे काम करते, कोई 18 घंटे काम कर रहा है, किसी को लीव, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे जो आए हैं सामने रिपोर्ट में?
जी, ये मुद्दे रिपोर्ट में आए हैं। इसमें जैसे इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक आदमी करीब औसतन 14 घंटे काम करता है, तो और उसको मतलब एक दो स्टेट को छोड़ के और कहीं वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है, तो ये बातें भी सामने रखी गई हैं। और जो पुलिस की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके हालात का जो चित्रण किया गया है, वो काफ़ी मतलब हिला देने वाला है कि भाई आप उसको, एक तो जैसा रिपोर्ट में लिखा है, इट इज़ स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा खिंची भी हुई है, इतना ज़्यादा मतलब क्योंकि जनशक्ति कम है और काम ज़्यादा है, तो खिंचाव ज़्यादा है और फिर स्ट्रेस, उसके बाद दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेस्ड फोर्स है। फिर इसकी हाउसिंग ठीक नहीं है, हाउसिंग परसेंटेज बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है, और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, टॉयलेट की है, ड्रिंकिंग वाटर की है, वो नहीं है, स्टेशनरी कभी कभी अपने जेब से लोग पैसा खर्च करते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब गाड़ी नहीं रहती, आप मौके पर नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा है कि स्टाफ की कमी के कारण आप स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो जाना चाहिए वो नहीं कर पाते, तो बहुत वो सारी परिस्थितियाँ जिसके कारण पुलिस में संसाधनों की कमी है और जिसकी वजह से पुलिस को अपना काम करने में दिक्कत आती है, उसका बहुत सही चित्रण इसमें किया गया है।
सर, एक चीज़ और जो चीज़ छूट रही है वो ये है कि ग्लोबली जो है क्राइम बदल रहा है, अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, अपराधी बदल रहे हैं, और हम उस तरह से मॉडर्नाइज्ड हैं उसको डील करने के लिए या नहीं?
नहीं, अभी नहीं है। ये भी बात रिपोर्ट में आई है कि जैसे साइबर क्राइम है, अब इसके लिए जो स्किल चाहिए वो अभी पुलिस विभाग में मतलब है, शुरू किया है, लोगों ने कोशिश किया है, पर जिस अनुपात में इसकी आवश्यकता है वो अभी पुलिस विभाग में नहीं है। तो जो और सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर क्राइम है, इनको डील करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग जिससे हम उनको सिखलाई दे सकते हैं, वो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है। मुश्किल से 6-7% आदमी ट्रेंड है। वेपनरी का तो इसमें जिक्र नहीं है,
वायरल हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा के जो लास्ट राइड्स में वो बंदूक ही नहीं चली।
हाँ, पर वेपनरी का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं आया है, पर ये सही है कि वेपनरी की ट्रेनिंग भी नहीं है और वेपनरी भी आउटमोडेड है, एंटीक्वेटेड है, ये बात भी अपनी जगह सही है।
तो कब तक आपको लगता है कि भारत उस लेवल पर आ जाएगा कि इंटरनेशनली कम्पीट कर पाए पुलिस फोर्सेज से दूसरे देशों की?
दो तरह से हम उसके तरक्की की बात कर सकते हैं। एक तो यह है कॉस्मेटिक तरक्की, मतलब हथियार में, संसाधन, गाड़ी में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, इसको जिसको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा, वर्क एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें आपके दिमाग में ये बात ना आवे कि हमारा नेता ये चाहता है, मुख्यमंत्री ये चाहता है, मंत्री ये चाहता है, MLA ये चाहता है, ये हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। संदीप राय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में हैं। संदीप, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी कुलदीप, आज के लगभग अखबारों में, सभी अखबारों में RBI से 2.25 लाख करोड़ रुपए निकालकर सरकार को दिए जाने के बाद सरकारी तैयारियों की खबर को पहले पन्ने पर लिया गया है। इससे जुड़ी एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें कहा गया है कि विमल जालान कमेटी ने RBI से 54,000 करोड़ रुपये और मांगे थे, लेकिन केंद्रीय बैंक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, जिसमें कहा गया है कि RBI से मदद मिलने के बाद अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही अखबार लिखता है कि RBI को लूटने के राहुल गांधी के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खारिज कर दिया है और कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। एक और खबर है नवभारत टाइम्स में, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार कश्मीर पर 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की आज घोषणा कर सकती है। जैसा कि पता होगा, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। दिल्ली के हम अगली खबर पे चलते हैं, जहाँ पे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट स्टेडियम को हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मंत्री अरुण जेटली के नाम पर किया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। आज के लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर
जी एक खबर और दिल्ली से ही है, और वो खबर है प्रशासन से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ। दो अखबारों में तो मैं पहले पन्ने पर देख रहा हूँ, पंजाब केसरी में भी है, अमर उजाला में भी है, और शीर्षक है पंजाब केसरी का, दिल्ली में अब पानी का बकाया बिल माफ़। अमर उजाला में शीर्षक है, बिजली के बाद पानी का बकाया बिल भी माफ़, केजरीवाल सरकार ने ख़त्म किया सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का सरचार्ज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और केजरीवाल सरकार इस तरीके के लगातार फैसले कर रही है।
हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर कानून की एक छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। ये यूपी के हैं, शाहजहांपुर के पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है।
हाल ही में खबर अमर उजाला में भी है, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद, और उत्तर प्रदेश से ये खबर आई है, और उन पर जो आरोप लगे हैं उसमें है कि छात्रा के पिता की जो तहरीर है वो ये कहती है कि उनकी बेटी व अन्य छात्राओं ने उन पर शारीरिक शोषण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं।
जी, धमकी के अलावा अपहरण भी हो गया है, क्योंकि उस लड़की का भी शायद पता नहीं चल पाया है, और एक वीडियो इस लड़की का आया था जिसमें उसने दावा किया था कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जिसमें कहा गया है कि केरल में 10 लोगों को ऑनर किलिंग के लिए आजीवन
कारावास
कारावास की सजा दी गई।
एक खबर चिदंबरम की, 13 देशों में है संपत्तियां, ये खबर भी पंजाब केसरी में पहले पन्ने पर। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए, समय कम है, बहुत शुक्रिया संदीप राय का। और अब बात कश्मीर के उस शासक की, जिसकी कब्र बिहार के नालंदा ज़िले के बेशवक गांव में है, लेकिन बिहार और कश्मीर के बीच की ये महत्वपूर्ण कड़ी बदहाल है। यूसुफ शाह चक कैसे पहुंचे बिहार और इस ऐतिहासिक पहचान पर क्या खतरा है, बता रही हैं नालंदा के बेशवक से सीटू तिवारी।
राजधानी पटना से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर नालंदा जिला का बिस्वक गांव, यहां कश्मीर पर हुकूमत कर चुके एक सुल्तान यूसुफ शाह चक अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। यूसुफ शाह चक वंश के शासक थे, उन्होंने कश्मीर पर 1578 से लेकर के 1586 तक शासन किया। इतिहासकार इम्तियाज अहमद बताते हैं,
खुद यूसुफ चक का जहां तक सवाल है, जो अकबर के द्वारा पराजित हुआ और जिसको अकबर ने लाकर बिहार में परगना बिस्वक में बसाया, तो उसके बारे में मासरुल उमरा में भी चर्चा है और आईने अकबरी में जो सूची है अकबर के मनसबदारों की, उसमें भी उसका नाम आता है। लेकिन वो कोई बड़ा मनसबदार नहीं था, उसको बहुत मामूली सा मनसब दिया गया था 500 का, और वो भी लगभग 2-2.5 साल तक उसको जेल में रखने के बाद। और जब उसको ये मनसब मिला भी 500 का, तो उसको राजा मान सिंह के अधीनस्थ रखा गया, और राजा मान सिंह उस समय बिहार में गवर्नर के रूप में थे। और जो वर्णन मिलता है वो ये है कि कुछ जमाने के बाद 1592 में उसकी मृत्यु हुई।
बिस्वक में राजा की ये कब्र आज बदहाल है। इस कब्रगाह के कस्टोडियन यासीर रशीद खान ने बीबीसी को बताया कि बिस्वक में 6 बीघा और बगल के कश्मीरी चक में, जहां चक वंश से जुड़े लोग रहते थे, वहां 2 बीघा जमीन है। उन्होंने बताया कि 1947 के दंगों में यहां से चक खानदान के ज्यादातर लोग चले गए और स्थानीय दबंगों ने खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
सुल्तान यूसुफ शाह चक और उससे रिलेटेड जमीनें अतिक्रमण होती जा रही हैं, जिस संबंध में मैंने 2013 से अंचलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग को कई बार लिखित शिकायत किया।
यासीर का कहना है कि साल 2016 में राजा यूसुफ चक सहित 7 महत्वपूर्ण लोगों की कब्रगाह की 4 दीवारी उन्होंने अपने पैसे से करवाई। हालांकि बीबीसी से बात करते हुए पुरातत्व निदेशालय के निदेशक अतुल कुमार वर्मा ने दावा किया कि 4 दीवार सरकार ने कराई है। वहीं हिलसा के अनुमंडल पदाधिकारी वैभव चौधरी ने कहा कि जमीन की नापी करा ली गई है, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई के लिए कोई आदेश अभी नहीं है। वहीं बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अभी ये जगह पर्यटन लायक नहीं है।
तो मजार को देखना पर्यटन का काम है, उसमें पर्यटन होने लायक होगा तो हम लोग पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग कला संस्कृति विभाग बताएगा।
यूसुफ शाह चक बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे, उन्हें संगीत कला का ज्ञान था, वो हिंदी कश्मीरी और पर्शियन कविता के जानकार थे और उनके खेल में रुचि थी। यूसुफ शाह चक की पत्नी का नाम हब्बा खातून था, वो कश्मीर की बहुत मशहूर कवियत्री थी। इतिहासकार इम्तियाज अहमद बताते हैं कि यूसुफ शाह की कैद के बाद हब्बा खातून ने सन्यासिन बनकर कश्मीर में ही अपना जीवन बिताया।
हब्बा खातून का ज्यादा महत्व इसलिए है कि मध्यकालीन कश्मीर में, बल्कि मध्यकालीन भारत को ही अगर आप ले लीजिए, तो एक ऐसी महिला जिसने उस समय के सामाजिक बंधनों से अलग एक आजाद एक उन्मुक्त जीवन बिताया और जो कहते हैं कि शी लिव्ड ऑन हर ओन टर्म्स।
नालंदा के इस्लामपुर थाने से बिस्वक जाते वक्त शेख अब्दुल्ला रोड पड़ती है। कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला 19 जनवरी 1977 को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की एक टीम के साथ बिस्वक आए थे। कुछ माह पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और शेख अब्दुल्ला के पोते उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिस्वक में कश्मीर के इतिहास को संरक्षित करने की अपील की थी। वहीं बिस्वक की बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्यों से इतर स्थानीय निवासियों के अपने दावे हैं। स्थानीय पुजारी दीनानाथ पांडे, जिनका ग्रामीणों पर बहुत प्रभाव है, वो कहते हैं,
कब्र तो लोग अभी बता रहे हैं कि कब्र वहाँ पड़ी है, लेकिन ऊपर से कब्र है, नीचे तो मंदिर पड़ा हुआ है। विष्णु का मंदिर वहाँ पर है जहाँ पड़ी कब्र बना हुआ है। उसके बाद पूरब साइड में आप देखिए तो वहाँ पड़ी भगवान बुद्ध का मूर्ति था और मंदिर था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, इसे मुगल कालीन की बात आती है।
कश्मीरी चक से थोड़ी ही दूर पर हैदर चक है। गौरतलब है कि हैदर चक यूसुफ चक के समय का ही कश्मीरी सामंत था। कश्मीरियों में अपने इस राजा की याद को बचाने की तड़प देखी जा सकती है, लेकिन पर्यटन और इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस जगह के प्रति बिहार सरकार में गहरी उदासीनता दिखती है। इतिहास शायद ही बिहार को इस बेरुखी के लिए माफ करे। बिस्वक नालंदा से बीबीसी हिंदी के लिए सीतू तिवारी।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टेनिस के कोर्ट पर, जहां पर यूएस ओपन चल रहा है, जहां पर महिला एकल में आप देखेंगे अमेरिकी खिलाड़ी वीनस विलियम्स को यूक्रेन की खिलाड़ी एलिना सिवितोलिना के खिलाफ खेलते हुए, तो वहीं सेरेना विलियम्स अमेरिकी खिलाड़ी कैटी मैकनाली के खिलाफ खेलती हुई नजर आएंगी। ये दोनों ही मुकाबले दूसरे दौर के मुकाबले हैं। ब्रिटेन की खिलाड़ी जोहाना क्वांता का मुकाबला होगा रूस की खिलाड़ी मार्गरीटा के साथ। और प्रमुख मुकाबलों की बात कर रहे हैं तो पुरुष एकल में भी आपको दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। राफेल नडाल का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जॉन मिलमैन के साथ। राफेल नडाल का यूएस ओपन में ये पहला राउंड होगा। तो वही रॉजर फेडरर अपने दूसरे राउंड के मुकाबले के लिए उतरेंगे और उनका मुकाबला होगा बोस्निया के खिलाड़ी दामिर के साथ। तो नोवाक जोकोविच भी अपना दूसरे राउंड का मुकाबला खेलने उतरेंगे और उनका मुकाबला होगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी जुआन लोंदेरो के साथ। और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया। जेटली का निधन शनिवार को दिल्ली के एम्स में हो गया था। स्टेडियम का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम होगा, हालांकि ग्राउंड का नाम फिरोज शाह कोटला ही रहेगा। इसके नामकरण के लिए 12 सितंबर को एक प्रोग्राम होगा। इस दौरान स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू शामिल होंगे।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने अपने देश के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया के इदलिब में अतिरिक्त कार्रवाई के लिए तुर्की और रूस के बीच में सहमति बन गई है। फलस्तीन के गाजा पट्टी में दो पुलिस चौकियों पर विस्फोट में दो अधिकारियों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पिछले चार महीनों में लेबनान ने 2500 सीरियाई शरणार्थियों को वापस उनके देश प्रत्यर्पित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत के यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने बताया कि वित्तीय निवेशक जेफरी एपस्टीन ने उनका कम उम्र में यौन शोषण किया था। कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन के पूर्व बॉस फर्नांडेज पीज का निधन हो गया, वो 82 साल के थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।